आगे चलते हैं। वलिल्लाही मुल्कु समावाती वल अर्द, और अल्लाह ही के लिए है बादशाही आसमानों की और जमीन की। यग़फिरु लिमन यशाउ व युअज़्ज़िबु मन यशा, जिसे चाहे वो माफ कर दे और जिसे चाहे सजा दे। वकाना अल्लाहु गफूरर रहीमा, और है अल्लाह गफूर रहीम। आप ऊपर आप देखें आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला ने शदीद तंबीह की है, धमकी दी है, डरावा दिया है। किस बात पे? कि वो लोग जो के ईमान से खाली हैं, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान से खाली हैं। यहाँ पे जो है वो मक्का के काफिर मुराद नहीं है, बल्कि ऊपर की आयतों में आप मुनाफिकीन के बारे में पढ़ रही हैं कि मुनाफिकीन जो थे सुलह हुदैबिया के मौके पे पीछे रह गए, कहा कि हमें घर और माल जो है उसने मसरूफ कर रखा है और आप तो बड़े नेक हैं, बस हमारे लिए दुआ करें, है ना, आप हमारे लिए इस्तग़फ़ार की दुआ करें। और अब यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जो अल्लाह और इसके दीन के मामले में मुखलिस नहीं होते, आजमाइश का वक्त आने पर दीन की खातिर अपनी जान, माल और अपने मफाद को खतरे में नहीं डालते, उसकी कुर्बानी नहीं देते, उससे जी चुराते हैं, तो याद रखें ये लोग जो हैं ये मुसलमान ही नहीं हैं, ये काफिर हैं। इनके लिए जो है वो जलती हुई आग का अजाब जो है वो तैयार कर रखा है। आसमान और जमीन की बादशाही का मालिक अल्लाह ही है। और इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है बता रहे हैं कि बादशाही, खुदाई, हुकूमत किसकी है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह के सिवा बादशाही और हुकूमत जो है वो किसी और की नहीं है। तो जब इख्तियारात अल्लाह के हैं, बादशाही अल्लाह की है आसमानों में भी और जमीन में भी, तो जिसे चाहे माफ कर दे और जिसे चाहे सजा दे। क्योंकि मुनाफिकीन ने जब उजर पेश किया था कि हम मसरूफ हैं पीछे और आप हमारे लिए दुआ करें, तो अल्लाह ताला ये बात बता रहे हैं कि अगर कोई शख्स गैर मुखलिस है अल्लाह और अल्लाह के रसूल से, दीन के मामले में उनके अंदर इखलास नहीं पाया जाता, और खा कोई ही दुआ क्यों ना करे, अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा। और दूसरी बात क्या है कि अल्लाह क्या करेगा कि अल्लाह ताला जो है चाहे तो उनको सजा दे सकता है। लेकिन यग़फिरु, पहले कहा यग़फिरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, बीच में अजाब की बात है, आगाज मग़फ़रत से किया एंड फिर मग़फ़रत पे है। वकाना अल्लाहु गफूरुर रहीम, इसकी क्या वजह है? आप वो हदीस पढ़ चुकी ना, सबकत रहमती गज़बी, अल्लाह की रहमत जो है वो अल्लाह के गजब पर जो है ना वो हावी है। बस इतना ही याद कम अज कम रखें कि सबकत रहमती गज़बी, कि अल्लाह की रहमत जो है वो अल्लाह के गुस्से पर जो है वो सबकत लेकर गई है, हावी है। माने ये है कि अगर लोग निफाक छोड़ दें, अगर लोग जो है गैर मुसलमाना या गैर मुखलिसाना जो रवैया है उसको छोड़ दें, अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर तुम अल्लाह को गफूर रहीम पाओगे, तुम्हारी पिछली सारी कोताहियां अल्लाह माफ कर देगा, और आइंदा तुम्हारे साथ अल्लाह वही मामला करेगा जो कि वो मुखलिसीन के साथ करता है। आप सोचिए कितना बड़ा सौदा है, कितनी बड़ी बात है कि वो शख्स जो अब भी पलट आए, अब भी ठीक हो जाए, वो गलत सहारे ढूंढना छोड़ दे, अल्लाह की रजा जो है उसकी जिंदगी का मकसद बन जाए, पैगंबर के बताए हुए रास्ते पर चलने लगे, तो ऐसा शख्स कैसा है? कि ऐसे शख्स के लिए फिर अल्लाह ताला गफूर रहीम है। वरना फिर अल्लाह ताला अगर पकड़ना चाहेंगे तो अल्लाह को पकड़ने से कोई रोक नहीं सकता। फिर फरमाया सयकूलुल मुखल्लफूना, अन करीब कहेंगे मुखल्लफून। मुखल्लफून कौन है? मुखल्लफ की जमा है मुखल्लफून, और मुराद कौन है? पीछे रहने वाले। और ये पीछे रहने वाले कौन थे? ये मुनाफिकीन थे। और आप देखें कि वो ये समझ रहे थे कि हम बड़ी अकलमंद हैं कि बहाना करके पीछे रह गए, लेकिन अल्लाह ताला क्या कहते हैं, असल में इनको पीछे छोड़ दिया गया है ना। सयकूलुल मुखल्लफूना, जल्दी ही कहेंगे, अनकरीब कहेंगे पीछे छोड़े जाने वाले, कब कहेंगे? इज़न तलक तुम, जब तुम जाने लगोगे। आपको पता ही है ना तलाका के मानी क्या होते हैं, आजाद कर देना, छोड़ देना, इसी से तलाक है। और यहाँ पे अल्फाज की ज्यादती, मानी की ज्यादती पर दलालत करती है इन तलक तुम, जब तुम जो है वो चलोगे, जब तुम ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सफर शुरू करोगे। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सफर शुरू कर देंगे और जाने लगेंगे, कहां जाएंगे? इला मगानिमा, गनीमतों की तरफ। मगानिम मगनम उनकी जमा है, मगनम। आप इसी से याद रखें, मगानिम है ना, तो मगनम, अलिफ शुरू का निकाल दें आप, मगनम मगनमुन। मगानिम या मगनम फिर किस माल को कहते हैं? ये वो माल होता है जो कुफार की लड़ाई में मुसलमानों को मिले। और गनम वैसे किसे कहते हैं? बकरियों को कहते हैं, बकरियां, बकरियों का रेवड़। आप सूरत अनफाल में पढ़ चुकी हैं। तो ऐसा रेवड़, ऐसा माल जो कि बस ऐसे ही मुसलमानों के हाथ आ जाए, मुफ्त में हाथ आ जाए, या वैसे ही है कि जंग की है और उसके बाद बहुत सा माल गनीमत मिल गया है, उसको कहा जाता है कि जब तुम चलोगे माल गनीमत को हासिल करने के लिए, तो मुनाफिकीन भी कहेंगे, क्या कहेंगे? अब आप देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का जाना कहां पे? गनीमतों की तरफ। तो क्यों जाना? लिता खुजूहा, ताकि हासिल करो इनको। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, जब माल गनीमत हासिल करने के लिए जाने लगेंगे और आपके साथ जब सहाबा होंगे और आप जा रहे होंगे, उस वक्त मुनाफिक आकर कहेंगे जरूना, इजाजत दीजिए हमें। जरूना का रूप क्या है? वजारा, वजारा, और इसके मानी है छोड़ दीजिए, यानी इजाजत दीजिए, हमें भी इजाजत दे दीजिए, नत्तबेकुम, हम पैरवी करेंगे आपकी। तो वो कहेंगे हमें भी अपने साथ अब चलने दीजिए, हम आपके साथ जाना चाहते हैं। तो गोया के रसूलुल्लाह से कहा जा रहा है कि करीब वक्त आने वाला है कि जब वो मुहिम जो इनको आसान लगेगी और फतह इनको यकीनी नजर आ रही होगी और नजर ये आ रहा होगा कि माल गनीमत मिलने वाला है, तो दौड़ते हुए चले आएंगे और आपसे दरख्वास्त करेंगे कि हमें भी साथ लेके चलो। और कहते हैं कि सुलह हुदैबिया के 3 ही महीने बाद ये वक्त आ गया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर पर चढ़ाई की और बड़ी आसानी के साथ आपने खैबर को जो है वो फतह कर लिया। तो यहां पे इशारा किसकी तरफ है? खैबर और उसकी गनीमतों की तरफ। और खैबर जो है, इसमें मुसलमानों ने जो है वो चढ़ाई की थी, और खैबर से क्या क्या मुसलमानों को मिला, और मुसलमानों ने खैबर की तरफ जो है वो चढ़ाई क्यों की थी, इसकी क्या वजह थी? असल में आपको ये बात तो पता ही है कि गजवा एहजाब में बनू नदीर का सरदार हुई बिन अख्तब भी कत्ल कर दिया गया, जो खैबर के यहूद का सरदार था। तो यहाँ के यहूदी जो थे, ये बहुत ज्यादा गुस्से में थे और मदीने पर जोरदार हमला करके मदीना को खत्म करने की ये तैयारियां कर रहे थे, ऐसी खबरें मिलती रहती थी। और ये खबरें जब मदीना पहुंचती थी, तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनासिब समझा कि सुलह हुदैबिया के बाद आप खुद इन पर लश्करकशी करें। और वैसे भी ये जो इनका सरदार था, खैबर का जो सरदार था, इसने ही तो बनू कुरैदा के लोगों को जो है वो जो अमादा किया था, किस पर? अहद शिकनी पर, गज़वा अहज़ाब में, याद है ना आपको? और कहा था कि मैं भाग के नहीं जाऊंगा, और फिर इसको भी उन लोगों के साथ शामिल कर लिया गया था, और फिर वो भी हजरत साद बिन मुआज जो थे उनके मशवरे पर जो है फिर उनको कत्ल कर दिया गया। तो अब जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर पर हमले का जो है वो इरादा किया, और अब मुनाफिकीन जो थे इनके बारे में बताया जा रहा है कि अब वो ये चाहते हैं कि वो भी रसूल के साथ जो है वो जाएं। तो गोया के मुनाफिक का किरदार बताया जा रहा है, मुनाफिक अपने आप को कभी खतरे में डालना नहीं चाहता, ہمیشہ اپنی جان، اپنی صلاحیتیں، اپنی قوت، اپنے مال کو بچاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے، جماعتوں کو بھی، انسانوں کو بھی، اور پھر فیصلہ کرتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا. تو صلح حدیبیہ کے موقع پر منافق جو تھے ان کو لگ رہا تھا کہ بڑا ہی خطرے کی بات ہے، تو انہوں نے انکار کر دیا. اور یہ ارد گرد کے قبائل کے جو لوگ تھے وہ زیادہ تر تھے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یریدونا، وہ چاہتے ہیں، ان یبدلوا، کہ وہ بدل دیں، کلام اللہ، اللہ کے فرمان کو. تو اللہ کے فرمان سے کیا مراد ہے؟ کہ خیبر کی مہم میں حضور کے ساتھ صرف انہی لوگوں کو جانے کی اجازت دی گئی تھی جو حدیبیہ کی مہم پر آپ کے ساتھ گئے تھے اور بیعت رضوان میں شریک ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے خیبر کے مال غنیمت میں یہ بات کہہ دی تھی کہ صرف وہی لوگ جا سکتے ہیں جو کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر گئے تھے. اور اللہ کا یہ فرمان جو ہے، یہ آپ اسی سورت کی آیت نمبر 18 میں جو ہے وہ پڑھ سکتی ہیں. پھر ہم پڑھیں گے کہ مزید اس کی آگے وہاں وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے خیبر میں جو ہے وہ مال غنیمت عطا کیا. تو یہاں پہلے ہی بتا دیا کہ جب وہ موقع آئے گا تو یہ تم سے جانے کی جو ہے وہ اجازت دیں گے. اچھا، خیبر کی جو فتوحات اور خیبر کا جو مال غنیمت ہے، تھوڑا سا اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. خیبر میں یہودیوں کے جو مشہور قلعے تھے جن میں 20,000 جنگی سپاہی موجود تھے، آزمودہ کار سپاہی، اسلامی لشکر رات کے وقت خیبر کے پہلے قلعے نائم پر پہنچ گیا. نون الف عین میم، یہ پہلا قلعہ تھا. اس وقت قلعے والے اسلامی لشکر کی جو آمد اور اس کا حملہ تھا اس سے بالکل بے خبر، خواب میں تھے. اور ویسے تو قلعے کو فتح کرنے کا بہترین موقع رات کا وقت تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب خون مارنے کے خلاف تھے. حالانکہ اہل مکہ کا یہ رواج اور انداز رہا، سورت عادیات میں اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا، والعادیات دبھا فالموریات قدھا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت حملہ کرنے کے خلاف تھے، اور آپ نے مسلمانوں کو شب خون ماری کی ممانعت کر دی تھی، لہذا آپ نے لشکر کو صبح تک رکے رہنے کا حکم دیا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ جب کسی قوم پر جہاد کرتے تو ان پر صبح تک حملہ نہ کرتے. صبح اگر ان لوگوں میں اذان کی آواز سنتے تو حملہ نہ کرتے. اگر وہ جو قبیلہ ہوتا یا کوئی آبادی تھی اس میں سنتے کہ اذان کی آواز آ رہی ہے تو پھر بھی حملہ نہ کرتے، اور اگر اذان کی آواز نہ آتی تب حملہ کرتے. جب صبح ہوئی تو یہودی پھوڑے ٹوکریاں لے کر نکلے، کیونکہ وہ زراعت پیشہ تھے. جیسے کسان لوگ صبح صبح نکلتے ہیں نا کھیتوں کی طرف، وہ نکلے. جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو چیخ اٹھے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو لشکر سمیت آن پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر نعرہ لگایا، اللہ اکبر، خرابت خیبر. خرابہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ویران ہو جانا. خیبر، اللہ اکبر، خیبر کی شامت آ گئی. پھر فرمایا، ہم جب بھی کسی قوم کے آنگن میں اترے تو جن لوگوں کو ڈرایا گیا ان کی صبح منحوس ہی ہوتی ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. اب یہودی ڈر کر شہر کی طرف بھاگے اور قلعہ نام میں جا پناہ لی. نام میں یہود کا صرف جو تھا وہ سامان رسد موجود تھا، جیسے مختلف سامان، کھانے پینے کا اور مدد کا. کوئی بڑی فوجی قوت موجود نہ تھی، لہذا مسلمانوں نے اسے آسانی سے فتح کیا. اس کے بعد دوسرے چھوٹے قلعے بھی آسانی کے ساتھ جو تھے وہ فتح ہوتے گئے، لیکن سب سے مضبوط اور سب سے اہم جو تھا وہ سلام بن ابی الحقیق کا قلعہ تھا. اس کا نام قموس ہے، قاف میم واو سواد، جس میں یہود کا سردار اور مشہور جری پہلوان مرحب بھی تھا. مرحب بہت بہادر تھا. قموس پر ہر روز حملے ہوتے رہے لیکن یہ فتح ہونے میں نہ آتا تھا. اسی طرح 20 دن گزر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر فتح کرا دے گا. اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت رکھتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے. کون تھے یہ؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. ماشاءاللہ، آپ کو تو بونس نمبر ملنے چاہیے. لوگ رات بھر سوچتے رہے کہ دیکھیے کل کس کو جھنڈا ملتا ہے. اور آپ ذرا تصور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا 20 دن کے بعد کہ ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح کروا دے گا. اور ایک اور خاص بات, اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت رکھتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے. اب سب لوگ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے پوچھا علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ان کی تو آنکھیں دکھ رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو اسے بلانے کے لیے بھیج دو. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے اپنا تھوک ان کی آنکھوں پر لگایا اور دعا کی. وہ ایسے اچھے ہو گئے جیسے انہیں کچھ تکلیف ہی نہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا ان کے حوالے کیا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ان سے اس وقت تک لڑتا ہوں جب تک وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا کہ آرام سے جاؤ, جب ان کے مقام پر پہنچ جاؤ تو انہیں اسلام کی دعوت دو. آپ کو پتا نا یہ مسلمانوں کا ہمیشہ طریقہ رہا کہ جاتے ہی حملہ نہیں کیا جاتا. مقصد حملہ کرنا, مال غنیمت جمع کرنا نہیں, مقصد یہ ہے کہ لوگ اللہ کی خدائی کو تسلیم کر لیں اور مسلمان ہو جائیں, تو انہیں پہلے اسلام کی دعوت دینا. اگر وہ اسلام کی دعوت قبول نہ کریں تو پھر اور ان پر اللہ کو جو فرض ہے وہ انہیں بتاؤ. اللہ کی قسم اگر تیرے ذریعے اللہ ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو وہ تیرے حق میں سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے کبھی کسی منصب یا عہدے کی آرزو پیدا نہیں ہوئی, لیکن اس رات میرے دل میں بھی یہ خواہش مچل رہی تھی کاش صبح میرا نام پکارا جائے. یہ اس حدیث کو جو ہے وہ امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا عمر جو تھے یہ کون تھے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے. اور اگر میں کہتی کہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے, عبداللہ بن عمر, تو عبداللہ بن عمر نہیں بلکہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں کبھی کسی منصب یا عہدے کی تمنا نہیں پیدا ہوئی, لیکن اس رات میرے دل میں یہ خواہش مچل رہی تھی. تو کیوں آپ کے دل میں یہ خواہش مچل رہی تھی کہ کاش صبح میرا نام لیا جائے؟ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے. اور پھر جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اور مرحب کا مقابلہ ہوا. اور آپ کے مقابلے کے لیے یہودی جو بہادر تھا پہلوان مرحب مقابلے کو نکلا اور میدان میں اتر کر 3 مصروں کا اس نے شعر پڑا. قد علمت خیبر انی مرحب شاکر صلاحی بطل مجرب اذ الحروب اقبلت تلہب. سارا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں. مرحب کا مطلب کیا ہے؟ رحب سے ہے نا, ہتھیار بند ہوں. اور اس وقت آزمودہ کار پہلوان ثابت ہوتا ہوں جب لڑائیاں شولے اڑانے لگتی ہیں. بہت مشہور بہادر تھا یہ. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی جواب میں 3 مصرے کا شعر پڑھا. سبحان اللہ. ان الذی صمتنی امی حیدرا کلیسی غابت کرہل منظرا اوفیہم بالسائی کیلل سندرا. میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے شیر رکھا تھا حیدر. میں جنگلوں کے شیر کی طرح جس کو دیکھوں سب ڈر جاتے ہیں, اور میں اینٹ کا جواب پتھر سے دیا کرتا ہوں. کہ میرے کوئی اینٹ مارتا ہے پتھر ہی ماروں تو اینٹ ختم ہو جاتی ہے. گویا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مرحب کے سر پر ایک ایسی کاری ضرب لگائی جس سے اس کا کام تمام ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر فتح دے دی. اس کو امام مسلم نے جو ہے وہ روایت کیا ہے. مرحب کے بعد اس کا بھائی یاسر میدان میں اترا تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اسے ڈھیر کر دیا. اس پر یہودیوں کی ہمت ٹوٹ گئی اور یہ قلعہ فتح ہو گیا. اس میں جو ہے 93 یہودی جو تھے وہ قتل ہوئے اور 20 مسلمان جو تھے وہ شہید ہوئے. اب جو ہے اس شکست کے بعد یہودیوں نے آپ سے درخواست کی کہ ان کی جان بخشی کر دی جائے. آپ نے اس کو اس شرط پر منظور کیا کہ یہودی اپنی تمام جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ. منقولہ کون سی ہوتی ہے؟ جیسی جو منتقل کی جا سکی ہو, جیسے ہوتے ہیں نا زیور چاندی یا پھر یہ مویشی یا ایسی چیزیں جس کو کسی ایک چیز میں لاد کر کہیں اور لے جایا جا سکے, منقولہ. غیر منقولہ جیسے باغات ہیں, زمین ہے, غیر منقولہ جو جس کی نقل و حرکت نہیں ہو سکتی, نقل مکانی نہیں ہو سکتی. तो आपने कहा यहूद अपनी तमाम जायदाद मनकूला और गैर मनकूला, हथियार, नकदी, मवेशी, जमीन और बागात सब कुछ मुसलमानों के हवाले कर देंगे, और अगर उन्हें जायदाद का अता पता बताने में पसो पेश किया तो ये मुआहदा खत्म और मुसलमानों को उन्हें कत्ल कर देने या जलावता करने का हक हासिल होगा। तो इस तरह आपने बनू नदीर से उसके मालो दौलत के बारे में पूछा, और वो मालो दौलत कौन सा था, वो मदीना से लेकर निकले थे, क्योंकि याद है एक दफा पहले जब मदीना में ये बहुत तंग करते रहते थे तो इनको इजाजत थी कि ऊंटों पर जितना चाहें जो है ये लाद कर ले जा सकते हैं, तो ये लेकर गए थे, हत्ता के इन्होंने जो घर थे उनकी छतें भी उधेड़ ली थी, लाद कर ले गए थे, ये पहले आप पढ़ चुकी हैं। और लेकिन हई बिन अख्तब के दामाद जो थे ना कनाना, वो नहीं बताना चाह रहा था, और बहरहाल एक और ने यहूदी ने बताया तो जंगल में भी एक माल का मदफून खजाना मिला। हई बिन अख्तब पता है आपको कौन थे? हजरत सफिया के ये वालिद थे। शाबाश। अच्छा, अब इसकी ये अहद चिकनी थी, इस बिना पर कनाना को कत्ल किया गया और इसके खानदान की औरतें और बच्चे गुलाम बना लिए गए, और फिर हई बिन अख्तब की बेटी सफिया जो थी वो भी आपके पास कैदी बनकर आई, तो चूंकि वो एक सरदार की बेटी थी आपने इज्जत की वजह से यानी उसको इज्जत दी और दूसरों को दुश्मन को बताना चाहा कि मुसलमान कैसे होते यानी इखलाक, तो आपने जो है उसे आजाद किया, और फिर दूसरी मेहरबानी ये की कि उसको अपने निकाह में ले लिया, तो इसका यहूद पर बहुत अच्छा असर हुआ, वरना आमतौर पर लोग वैसे बुरा सलूक करते हैं या गुलाम बना लेते हैं। तो फिर अब जो है ये जब हुआ तो माल गनीमत मतलब सब चीजें ले ली थी, लेकिन अब यहूदियों ने फिर दूसरी दरख्वास्त की कि इनकी जमीनी और बागात इन्हीं के पास रहने दिए जाएं, लिए ना जाएं, इन्हीं के पास रहने दिए जाएं, और इस शर्त पर वो क्या करेंगे कि वो सारी पैदावार का आधा मुसलमानों को अदा कर दिया करेंगे, निस्फ। आप बड़े मेहरबान थे, आपने उनकी ये दरख्वास्त मंजूर कर ली, पहले ले चुके थे, मायदा हो चुका था, लेकिन आपने उनकी ये दरख्वास्त मंजूर की, और साथ ही ये भी फरमाया कि अगर मुसलमानों से कोई बदअहदी या शरारत करेंगे तो मायदा खत्म हो जाएगा। अब फसल तैयार होती तो आप अब्दुल्ला बिन रवाह रजी अल्लाह को भेजते, वो पैदावार को दो हिस्सों में तकसीम करते, फिर यहूद को इख्तियार दिया जाता कि जौन सा हिस्सा तुम चाहो ले लो, और इस तरह यहूदियों पर इस फयाजाना अदल का इतना अच्छा असर हुआ कि वो कहते थे कि जमीन और आसमान ऐसे ही अदल पर कायम है। अच्छा, अब खैबर जो था जब ये फतह हो गया तो फिर आपने फिदक की तरफ तवज्जो की, क्योंकि ये लोग भी जंग पर तुले बैठे थे, सिर्फ एक दिन जंग हुई और दूसरे ही दिन सुबह जो थे मुजाहिदीन ने फतह पा ली, और इनसे भी जो है वो कुछ शराइत पर जो है वो मुआहदा हो गया, और फिर तैमा के यहूद को जब इन फतुहात की खबर मिली तो उन्होंने खुद ही जिजिये की शर्त पर सुलह कर ली। तो इस तरह खैबर वगैरह की फतह से यहूद का दमखम जो था वो बिल्कुल खत्म हो गया, और जो अहले मक्का थे जब उन्हें ये पता चला तो उन्हें बहुत सदमा हुआ, क्योंकि उनका एक मजबूत बाजू कट गया था और अब मुसलमानों के मुकाबले में तन्हा रह गए थे। अच्छा, इस वक्त ये बात भी आप याद रखें कि इसी मौके पर जो है वो जहरीली बकरी से आपको खत्म करने की साजिश भी की गई, के खैबर में कयाम के दौरान सलाम बिन मुशकम यहूदी की बीवी जैनब बिन तहारिस ने आपकी दावत की दरखास्त की, आपसे दावत की दरखास्त की जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल किया। ये दरअसल सब यहूदियों की आपस में एक साजिश थी, आपको खाने में जहर मिलाकर हिला कर दिया जाए। चुनाचे जैनब ने आपसे पूछा आप कौन सा गोश्त पसंद करते हैं, आपने फरमाया दस्ती का। दस्ती का कौन सा गोश्त होता है? बाजू का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के साथ दावत पर आए, लेकिन पहला लुकमा अभी हलक से उतरा ही था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हो गया कि इसमें जहर मिलाया गया है। आप खाने से रुक गए, लेकिन एक सहाबी बशीर बिन बराह वो दो चार लुकमे खा चुके थे, वो फौत हो गए। इस मौके पर अगर कोई और फातेह होता तो सब यहूदियों को जो है वो कत्ल करा देता, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब से पूछा तो उसने अपने जुर्म का इकरार कर लिया और बताया कि इस साजिश में सब यहूद मुलव्वस हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो यहूद को बुलाकर पूछा तो उन्होंने भी एतराफ कर लिया। आपने इनसे पूछा तुमने ऐसा क्यों किया, तो कहने लगे इसलिए किया कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो जहर आप पर असर नहीं करेगा, झूठे हैं तो आपसे हमारी जान छूट जाएगी, आप मुजस्मा रहमत है, लिहाजा आपने इन सब का ये कसूर भी माफ कर दिया। اور فقط بشیر بن برا کے قصاص میں زینب بنت حارث کو قتل کرنے کا حکم دیا. یہ بخاری کی روایت ہے. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ اب کتنا جو ہے وہ مال مسلمانوں کو ملا ہے. اب مال غنیمت تو یہ میں نے تفصیلات چند ایک آپ کو بتائی ہیں, اور اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ مال کثیر اور باغات مسلمانوں کے ہاتھ میں لگے, مسلمانوں کے معاشی حالات جو تھے وہ بہت بہتر ہو گئے, اور مہاجرین نے پھر اس موقع پر انصار کے وہ باغات بھی واپس کر دیے جو سلسلہ مواخات کے نتیجے میں مہاجرین نے شراکت کے مہاجرین کو دیے تھے انصار نے شراکت کے طور پر, ہے نا. اور غزوہ خیبر میں جو ہے پھر انہیں مجاہدین میں جو ہے وہ کیا کیا گیا کہ دوبارہ ان کو واپس کر دیا گیا. تو یہاں پہ بھی کیا ذکر ہے, سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ اِذَنْ تَلَقْتُمْ, جب تم مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے چلو گے, الى مغانما, مغانم کی طرف تم چلو گے, تو یہ مخلفون جو منافق ہیں یہ درخواست کریں گے کہ ہمیں بھی ساتھ لے کے چلو, ہے نا, لِتَأْخُذُوهَا, تاکہ تم حاصل کرو مال غنیمت کو. مغانم الى مغانما لِتَأْخُذُوهَا کی ضمیر مغانم کی طرف ہے, اور یہ سارے مغانم جس کا ذکر ابھی آپ نے پڑھا ہے یہ یہودیوں کے چھوٹے موٹے کچھ قبیلے تھے, اور اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ فدق کا جو علاقہ تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وہ کہیں گے ذرونا نتبعکم یریدون ان یبدلوا کلام اللہ, وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو اللہ کے فرمان کو بدل دیں. کل کہہ دیجئے لن تتبعونا, کہ تم ہرگز اتباع نہیں کر سکتے ہمارا, کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے. کذالکم, اسی طرح قال اللہ من قبل, اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے. اب یہاں پر جو ہے وہ پہلے کیا فرمایا جا چکا ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی ہی بات جو ہے وہ پہلے بھی کہی تھی. تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اس بات کا اشارہ جو ہے اس سورت کی آیت 18 اور 19 کی طرف ہے کہ مخلفین چاہیں گے لیکن آپ نے جو ہے ان کو اپنے ساتھ جو ہے وہ نہیں لے کے جانا. اور ویسے اگر آپ کو یاد ہو سورت توبہ, سورت توبہ کی آیت 84 میں بھی ہے نا, غزوہ تبوک کے موقع پہ جو تھے منافقین وہ کیسے کیسے بہانے بنا رہے تھے غزوہ تبوک کے موقع پر, اور انہوں نے بہت سے عسر پیش کیے, 180 کے قریب تھے وہ لوگ, اور جو کہتا جا رہا تھا آپ اس کو اجازت دیتے جا رہے تھے. اور پھر اس کے بعد جو ہے جب آپ جب واپس آئے اور اس کے بعد ایک اور جو مہم سر تھی تو پھر وہ چاہتے تھے کہ ان کو ساتھ لے جایا جائے, یعنی جہاں آسان لگتا تھا جانا چاہتے تھے, جہاں مشکل لگتا تھا رک جاتے تھے. سورت بقرہ میں بھی اس کی تمثیل ہے, روشنی نظر آتی ہے چلنے لگتے ہیں, بادل گڑ گڑ آتے ہیں اور رعد اور برق اور سائقہ, تو اس وقت جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ ان کی کیفیت ہے. فَسَيَقُولُونَ, پس جو ہے عنقریب وہ کہیں گے بلکہ کیا ہے, تَحْسُدُونَنَا, بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو. تو منافق جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے کیا کہیں گے, جب آپ منع کریں گے نا کہ تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے, تو کہیں گے کہ اصل میں بات یہ ہے تم ہمیں اس لیے منع کرتے ہو کہ تم ہمارے ساتھ حسد کرتے ہو. کیا مطلب اس کا, کہ تم نہیں چاہتے کہ ہمارے دن بھی بدل جائے, ہم بھی امیر ہو جائیں, ہمیں بھی مال غنیمت ملے, تو تم ہم سے حسد کرتے ہو. بعض لوگ جو ہیں جب کام کا وقت ہوتا ہے تو پیچھے رہتے ہیں, اور جب جو ہے وہ کوئی چیز کھانے پینے کی بات ہو, تقسیم کرنے کی بات ہو, مال غنیمت کی بات ہو, تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں, اصل میں عذر نے ہمیں روک رکھا تھا. یہ ان کی کیفیت ہے. بلکانو لا یفقہون الا قلیلا, بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں. تو اصل بات کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ صحیح بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اللہ کا دین جو ہے یہ قربانیاں مانگتا ہے, اور یہ لوگ جو ہے بغیر کچھ کیے کرائے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو دنیا مل جائے. اور منافق جو ہے وہ مصلحت کیش ہوتا ہے اور کم کوش ہوتا ہے, کام نہیں کرنا چاہتا. اب مزید جو ہے منافقین کے امتحان کی ایک کسوٹی بتائی جا رہی ہے. اب کیا کہا جا رہا ہے, قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے للمخلفین, مخلف کی جمع ہے مخلفین, और आप कह दीजिए इन पीछे छोड़े जाने वालों को, मुखल्लफ है ना, इन पीछे छोड़े जाने वालों को, पीछे रहने वालों को आप कह दीजिए मिनल आराबी, अराब में से। तो अराबी की जमा है अराब, और मुराद है बदवी लोग, ये देहाती लोग, के देहाती लोगों में से जो पीछे रहने वाले हैं उनसे आप कह दीजिए सतुदउना इला कौमिन, अनकरीब तुम बुलाए जाओगे एक कौम की तरफ। और ये कौन से लोग थे, ये आप पीछे भी पढ़ चुकी, ये असलम, मुजैना, जोहैना, गिफार, अशजा, दील वगैरह के कबाइल के लोग। जब उम्रे के लिए आप निकले थे ना, तब आपने इर्द-गिर्द के इलाकों में भी जो है वो ऐलान करवाया था, तो इन्होंने जो है वो माजरत कर ली थी। तो अब फिर कहा जा रहा है कि इन पीछे छोड़े जाने वाले बदवी बदवी अरबों से कह देना अनकरीब तुम बुलाए जाओगे, सतुद आउना, ये मजारे मजहूल है, इलाकौमिन एक कौम की तरफ, अनकरीब तुम्हें एक ऐसी कौम की तरफ बुलाया जाएगा। उस कौम की ना क्या सिफात है, उली बासिन शदीदिन। उली के मानी क्या है, वाली है, बासिन जंग, शदीदिन सख्त, जो बड़े जोर आवर हैं। इसके मानी ये हैं कि वो कौम जो है सख्त लड़ने वाली कौम है। और एक बात आप याद रखिएगा कि बासिन शदीदिन, और बास का लफ्ज इंतहाई भूख के वक्त भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो एक मुसीबत परेशानी का वक्त होता है, जंग के लिए भी ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और शदीद के क्या मानी होते हैं, सख्त, शदीद जो है इसके क्या मानी होते हैं, जैसे किसी चीज का भी जो है वो उरूज, किसी चीज का भी जो है वो बहुत बुलंदी पर होना, उस दरअसल ये लफ्ज कुवत, सौलत, मजबूती को जाहिर करता है कि एक ऐसी कौम की तरफ बुलाया जाएगा। और उस कौम की सिफ्त ये है कि वो कौम जो है वो कैसी है, उलिबासिन शदीदिन। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि उस कौम से मुराद जो है वो कौन से लोग हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जब तुम्हें बुलाया जाएगा एक सख्त जंगजू कौम से, और बुलाने का मकसद ये होगा कि ताकि जो है वो मुकाबला हो। तो ये जंगजू कौम कौन सी कौम थी, इस सिलसिले में एक राय तो ये है कि ये लोग थे सकीफ के, ये कबीला सकीफ के हवाजिन के लोग थे, बड़े ही जंगजू ये लोग थे। और चूंकि अल्लाह ताला ने ये खास सिर्फ जो है वो बताई है कि वो जंगजू लोग हैं, तो जंगजू लोग से मुराद जंगे हुनैन में हिस्सा लेने वाले कबीले सकीफ के और हवाजिन के भी हो सकते हैं, क्योंकि जंगे हुनैन में हिस्सा लिया था सकीफ के लोगों ने और हवाजिन के लोगों ने। तो एक राय ये है। दूसरी राय ये है कि इससे मुराद जो है वो मुसैलमा कज़ाब हो सकता है, क्योंकि मुसैलमा कज़ाब की जंगे यमामा में हिस्सा लेने वाले कौन थे, बनू हनीफा के लोग। तो मुसैलमा कज़ाब की जंग यमामा में हिस्सा लेने वाले जो थे बनू हनीफा के लोग, वो हो सकते हैं, क्योंकि हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह नो और उम्र फारूक रजी अल्लाह नो के जमाने में कई मार्के इन लोगों के साथ जो है वो पेश आए हैं। फिर जो है इसमें एक राय यह है कि इसमें इशारा है फारिस और रूम की तरफ, फारिस और रूम। फारिस से मुराद क्या है, ईरान, और फिर रूम, क्योंकि वहां पे भी जो है काफी मार्के पेश आए। और एक राय यह है कि इससे मुराद है कुरैश के लोग। तो कितनी राय आपके सामने आई, चार राय सामने आई। तो कुरैश के लोग क्यों कहा गया, इसलिए कि अरब में उनकी कुव्वत, सौलत, उनकी बहादुरी बहुत ज्यादा जो थी वो मशहूर थी, और इसीलिए तो उनसे फिर वो मुआहदा भी हुआ था ना आपस में जंग बंदी का। और मक्का कैसे फतह हो सकता था जब तक के जो है वो अरब की उली बासिन शदीद जो है वो इसको मफतू ना कर लिया जाता। तो बहरहाल ये सारे ही मुराद हो सकते हैं, क्योंकि सभी की तरफ जो है वो इशारा है, अनकरीब तुम्हें ऐसे लोगों से लड़ने के लिए बुलाया जाएगा जो बड़े जोर आवर हैं। फिर तुम्हें दो काम करने होंगे, नंबर एक तो कातिलू ना हूं और युस्लिमून, तुमको इनसे जंग करनी होगी या फिर वो जो है वो मुती हो जाएंगे। तो अब क्या कहा जा रहा है कि दो ही राहें बाकी रह गई हैं कि या फैसला इस बात से होगा कि वो इस्लाम को कबूल कर लें, और या फिर ये कि तलवार से ही उनको जो है मुती किया जा सकता है, या वो जिम्मी बन जाएं या वो वायदा कर लें और जिम्मी बनकर कुछ अदा करते रहें। तो बहरहाल अब यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है कि एक ही शक्ल जो है वो बाकी है, और वो ये है कि जो एक जंगजू कौम जो है, या एक या दो या जो भी ऐसे सख्त मरहले पेश आएंगे जो ये फैसला कर सके कि तुम सच्चे हो या झूठे, तो उस वक्त जो है ना जब रसूल तुम्हें बुलाएं, तो ए मुनाफिकिन तुम रसूल का जो है वो साथ देना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाना और फिर अपने आप को मुश्किल में डालना, तो ये अब फिर पता चलेगा कि तुम ईमान लाने में सच्चे हो या के झूठे हो। तो अच्छा यहां पर आपको समझ आएगी ना, तो कातिलूना हूं कि जिहाद करना है, और युस्लिमून जो है इसके मानी क्या है कि वो जो है वो अतात इख्तियार कर ले, है ना, ओ युस्लिमून, क्योंकि ओ युस्लिमून के मानी क्या है कि वो फिर मुती हो जाए। तो मुफस्सरीन कहते हैं कि यहाँ पे दो मानी हैं, दोनों ही मुराद हैं, नंबर एक कि वो इस्लाम कबूल कर लें, और दूसरे मानी क्या है कि वो इस्लामी हुकूमत की अतात कबूल कर लें, इस्लाम कबूल कर लें और इस्लामी हुकूमत की अतात कबूल कर लें। तो इस्लाम कबूल करना क्या है कि फिर तो उन पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं कर रहे तो फिर क्या है कि वो जिजिया देकर इस्लामी हुकूमत के पास रहेंगे, तो इस्लामी हुकूमत उनकी जान माल और उनकी इज्जत की मुहाफिज बनेगी, लेकिन फिर उनको अपनी मजहबी आजादी होगी, लेकिन इस्लामी हुकूमत को तस्लीम कर रहे हैं, ठीक है। और या फिर ये कि जरा फिर यही बात है। अच्छा इस सिस्टम में एक बात और याद रखें कि हजरत उबई बिन काब की किरात में और युस्लिमून जो है बगैर नून के आया है, जैसे है ना युस्लिमून, वहां पे नून नहीं आया। और फिर इमाम कुर्तबी जो है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर जैसे ओ युस्लिमून है तो फिर ओ को वो हत्ता के मानी में लेते हैं, वो क्या कहते हैं आप फिर आप ऐसे इसको पढ़ेंगी, तो कातिलूनहुम ओ युस्लिमून के उनसे जो है जिहाद करोगे यहां तक के वो लोग जो है वो मुती और फरमा बरदार हो जाए। बात एक ही है लेकिन बस फर्क क्या है कि ओ जो है या की बजाय फिर हत्ता के मानी में उन्होंने लिया है। फइन तुतीउ युतिकुमुल्लाहु अजरन हसना, उस वक्त अगर तुमने हुक्म जिहाद की अतात की, किसे कहा जा रहा है, मुनाफिकीन से कहा जा रहा है कि अगर उस वक्त तुम रसूल के साथ जिहाद के लिए चले गए तो अल्लाह तुम्हें क्या देगा, युतिकुमुल्लाहु अजरन हसना, तो अल्लाह तुम्हें जो है वो अच्छा अजर देगा। वइन ततवल्लौ, और अगर तुम मुंह मोड़ गए, कमा तवल्लैतुम मिन कब्लु, जिस तरह तुम पहले मुंह मोड़ चुके, अगर उस वक्त जो है तुम जाने की बजाय फिर पीछे रहना तुमने पसंद कर लिया, दुनिया के फायदे मुस्लिम मुआशरे में पीछे रहकर जो है वो अपनी जान अपने माल अपने घर अपना अपने बच्चे बस उन्हीं के पीछे तुम लगे रहे, तो याद रखना युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा, तो अल्लाह तुम्हें दर्दनाक जो है वो सजा देगा। अच्छा अब आप देखें कि यहां पे क्या मयार सामने आ रहा है, क्या कसौटी सामने आ रही है कि जब भी कोई ऐसा मरहला ऐसा मौका पेश आए जब दीन इस्लाम को आपकी जरूरत हो, तो उस वक्त उस जरूरत के मौके पर लब्बैक कहना चाहिए, हाजिर होना चाहिए, अपने आप को जो है बचाने की पॉलिसी पर अमल नहीं करना चाहिए। और आज भी जितनी भी दीन के लिए कोशिशें हो रही हैं, तो वही लोग कीमती लोग हैं जो वादा करते हैं और कोई कमिटमेंट देते हैं वॉलंटियर की रजा कराना काम करने की, हत्ता के कुर्सियां ही बिछानी है, माइक लगाना है, कंप्यूटर खोलना है, कोई भी काम है, जब वो एक कमिटमेंट कर लेते हैं ना, होता तो मुश्किल है, आसान तो कोई नहीं है, अपनी जान माल कुर्बानी नींद अपनी सोशल एक्टिविटीज घूमना फिरना फन बहुत सी चीजों की कुर्बानी देनी पड़ती है, तो फिर उनको वो ना उसको भूलते नहीं है, और फिर ऐसे ही पता चलता है कि कौन लोग कितने मुखलिस हैं। और नंबर दो फिर क्या बात सामने आती है कि कुछ लोग हैं कि बातें करते हैं और जब जरूरत पेश आती है तो उजर और बहाने पेश करते हैं, और फिर नंबर तीन फिर भी ये वो कहते हैं कि हम जो हैं हम मुखलिस हैं और हमारी बात मानी जाए اور پھر ہمیں وہی مقام دیا جائے جو کہ ان لوگوں کو ملا ہے جو کہ قربانیاں دینے والے ہیں. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دو ہی باتیں بتائی ہیں کہ یا تو ساتھ دیں گے, اور اگر وہ ساتھ دیں گے اس موقع پر تو اللہ ان کو اجرن حسنہ دے گا, اگر وہ پیچھے رہ جائیں گے جیسے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر پیچھے رہ گئے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا. تو پھر ایسے لوگ اللہ تعالیٰ پیچھے ان کو چھوڑتا چلا جاتا ہے. اس سے اور کیا بات پتا چلتی ہے کہ ہر نیکی ایک اور نیکی کو پکار کر موقع لاتی ہے, ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ کر لاتی ہے, اور اسی طرح ایک دفعہ پیچھے رہنا پھر ایک اور دھکا لگتا ہے اور انسان نیکیوں میں پیچھے ہو جاتا ہے, تو پیچھے پیچھے چلتا چلا جاتا ہے. اچھا پھر وہ کون سے لوگ ہیں جن کو شریک جہاد میں جو ہے وہ شامل ہونے سے معاف رکھا جا سکتا ہے؟ آیت نمبر 17 میں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, لیس علی الاعمی حرج, نہیں ہے کوئی بھی جو ہے وہ حرج کسی اندھے پر. اعمی جو ہے کسے کہتے ہیں؟ اندھے کو کہتے ہیں. کہ اندھے کے اندھا اگر جہاد میں شرکت نہ کرے تو اس کو نہیں عذاب ملے گا. یہ جو کہا نا یعذبکم عذابا علیما, تو اندھا اس میں شامل نہیں ہے. ولا علی الاعرج حرج, اور نہ ہی لنگڑا, لنگڑے پہ بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ عارج جو ہے کسے کہتے ہیں؟ لنگڑے کو کہتے ہیں. اور عارج کا لفظ اور کسے کہتے ہیں؟ سیڑھی کے لیے بھی آتا ہے. تو اندھا اور سیڑھی ان دونوں میں مناسبت کیا ہے پہلے ہی بتایا تھا. جو لنگڑا ہوتا ہے نا وہ پاؤں میں تکلیف کی وجہ سے جب چلتا ہے تو اس طرح اچھل اچھل کر چلتا ہے کہ جیسے کہ وہ چڑھائی چڑھ رہا ہے, جیسے کہ وہ بلندی چڑھ رہا ہے, جیسے کہ وہ سیڑھی پر چڑھ رہا ہے. آپ دیکھیں چڑھائی چڑھنا مشکل ہوتا ہے نا, تو لنگڑے کے لیے یا جس کے پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے اس کے لیے چلنا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا عَلَى الْعَرَجِ حَرَجٌ, اور لنگڑے پہ کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے, اس کی بھی کوئی پکڑ نہیں ہے, اس کے لیے بھی کوئی عذاب نہیں ہے. وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَج, اور جو مریض ہے اگر وہ جہاد کے لیے نہ آئے تو اس کے اوپر بھی کوئی حرج نہیں ہے. اب یہاں پر جو ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جہاد میں شرکت سے معاف رکھا ہے تو آپ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتی ہے. نمبر ایک, جو جسمانی طور پر جنگ کے قابل نہ ہوں, مثلا چھوٹے لڑکے ہیں یا عورتیں ہیں, مجنو ہیں, اندھے ہیں, ایسے مریض جو جنگی خدمات انجام نہ دے سکتے ہوں, یا معذور ہیں, ہاتھ پاؤں بیکار ہونے کی وجہ سے جنگ میں حصہ نہ لے سکے. دوسرے کون لوگ ہیں کہ جن کے پاس جو ہیں وہ جہاد میں شرکت کے لیے جو ہے معقول اسباب جمع نہ ہو سکتے ہوں. مثلا غلام ہیں, وہ جانا تو چاہتے ہیں لیکن آلات جنگی نہیں ہیں, سواری نہیں ہے. قرض دار ہیں, اب جو ہے ان کو ان کا قرض خواہ جو ہے وہ مہلت ہی نہیں دے رہا. ایسے لوگ جن کے والدین ہیں دونوں یا دونوں میں سے ایک, اور وہ محتاج ہیں اولاد کے, اور اب اولاد کا فرض ہے کہ ان کی خبر گیری کرے, اور وہ بوڑھے محتاج اور ایسے والدین کو چھوڑ کر جو ہے وہ اگر جہاد پر نہیں جاتے تو ان کے لیے بھی پکڑ نہیں ہے. اور اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ والدین اگر مسلمان ہو تو اولاد کو ان کی اجازت کے بغیر جہاد پر نہیں جانا چاہیے, اگر کافر ہو تو ان کے روکنے سے کسی شخص کا رک جانا پھر جائز نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک شخص گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاد پر ساتھ جانے کے لیے, تو آپ نے جو ہے اس نے بتایا تھا کہ میں آیا ہوں اور گھر میں والدین کو جو ہے وہ روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں, تو آپ نے کہا تھا کہ جا, اور جیسے ان کو رلایا ہے نا جا کر ان کو ہنسا اور جا کے ان کی جو خدمت کر. تو اس حدیث کے واقعے سے بھی ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ والدین کی اجازت جو ہے وہ کتنی ضروری ہے. اچھا یہ ساری باتیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اگر عذر ہے, واقعی عذر شرعی, تو اسلام کے ہاں وہ قابل قدر ہے, اور اگر عذر شرعی نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو بچانا نہیں چاہیے. تو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کا اعلیٰ مقام کیا ہے؟ اس کا اعلیٰ مقام یہ ہے کہ محبت طبیعت پر غالب آ جائے اور محبوب کے حکم کی تعمیل کی لذت جو ہے وہ ہر تلخی اور تکلیف کو لذیذ بنا دے. کیونکہ جب انسان کو محبت ہوتی ہے نا کسی چیز سے, پھر بھول جاتا ہے نیند کی جو ہے وہ نیند کی کمی اور تھکن کو, پھر وہ بھوک پیاس کو, کھانے پینے کو, پھر دوستیوں کو. محبت اس کی طبیعت پر غالب آنے لگتی ہے, بس ایک ہی اس کی دل کی دھڑکن ہوتی ہے, एक ही उसकी करवट होती है, एक ही उसकी उमंग होती है, एक ही उसकी तड़प होती है, एक ही जज्बा और शौक होता है कि बस मुझे जो है ना ये अल्लाह की रजा के लिए ये काम करना है। और जो ऐसा करेगा वह मैं युति अल्लाह व रसूल हूँ, और जो अताअत करेगा अल्लाह के और उसके रसूल की, युदखिल हु उसको दाखिल करेगा अल्लाह जन्नातिन जन्नतों में, तजरी बहती हैं, मिन तहती हल अनहार हु जिसके नीचे नहरें, अल्लाह ताला उनको ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बहती हैं। और किन्हें दाखिल करेगा? जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत करेगा। वमन यतवल्ला और जो मुंह मोड़ लेगा, युअज्जिबहु अज़ाबन अलीमा तो अल्लाह उसको दर्दनाक अजाब देगा। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर दर्दनाक अजाब की वईद जो है इससे इसने जो है माजूर सहाबा को बहुत परेशान किया। अब माजूर सहाबा जो थे वो रसूल अल्लाह के पास गए और फिर वो कहने लगे कि हम तो अंधे हैं, लंगड़े हैं, बीमार हैं, हम जिहाद में जा ही नहीं सकते, तो अब हम क्या करें? तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह फरमाते हैं कि ऊपर की आयात में जिहाद की शिरकत से हटने वालों के लिए जब अजाब की वईद आई तो फिर जो थे ये लोग रसूल अल्लाह के पास गए ना, उनको फिक्र हुई, तो उस पर जो है फिर अल्लाह ताला ने जो है ये आयत 17 में उनको जो है वो जिहाद से मुस्तस्ना कर दिया। और क्या बात कही कि असल बात अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत है, फिर अल्लाह उनको ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे जो है वो नहरें बहती होंगी। तो इससे जो है ये जो कुल सबक है, फिर इससे हमारे सामने क्या बातें आती हैं कि एक मुसलमान का किरदार क्या है, एक मुसलमान का अमल क्या है, और उसको नेकी जो है उसके लिए कितनी कोशिश करनी है। तो यहाँ पे असल में अगर आप गौर करें तो सूरत फतह जो है इसमें दो बातें बहुत अहम है, इसके दो मकासिद हैं जो बड़े मकासिद हैं। उसमें एक जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का साथ देने वाले जो मुखलिस मोमिन हैं, सादिक मोमिन हैं, उनका किरदार बताया जा रहा है कि वो क्या, क्यों, कैसे, बहाने, उजर नहीं तराशते। वो जो है वो क्या करते हैं, वो लब्बैक कहते हुए साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दूसरा किरदार बताया जा रहा है मुनाफिकीन का कि वो अपने आप को बचा बचा के रखते हैं, वो किसी किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होते। और आप देख लीजिए कि फिर आपने मुनाफिकीन के लिए जो है ये भी पढ़ा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उनका ये कहना कि ऐसी कौम जो है वो कैसी कौम है कि वो कौम जो है वो तबाह हो जाने वाली है। और तबाह होने के लिए अल्लाह ताला ने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, वकुन तुम कौमम बूरा। और कौमम बूरा जो है वो किसे कहते हैं? आपने क्या पढ़ा कि कौमम बूरा जो है वो किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? कसादा हत्ता फसादा। तो इसके मानी क्या है कि तिजारत में जब कसाद मंदी होती है और तिजारत जो है वो गिर रही होती है, पूरा कारोबार मंदा पड़ जाता है जैसे आजकल है, तो फिर क्या होता है कि नफा तो दूर की बात है, इंसान जो असल है ना उससे भी हाथ धो बैठता है। तो ये एक ऐसी कौम है कि कुछ भी नहीं मिलेगा। मुनाफिक कैसे हैं, जिनके दिलों में शक है, जिन्होंने जो है बहाने किए, वकुन तुम कौमम बूरा। अच्छा, दूसरी बात जो बहुत अहम है और वो क्या बात पता चलती है कि ईमान और आजमाइश लाजिम और मलजूम है ना, और कभी भी आजमाइशें आने पर घबराना नहीं चाहिए, मांगनी भी नहीं चाहिए, आ जाए तो घबराना भी नहीं चाहिए। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कौल जो है वो क्या है, अल अम्रु इज़ा दाका इत्तसा, कि जब मामला तंग हो जाता है वहीं से वुस्सत पैदा हो जाती है। फिर तीसरी बात कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो सुलह हुदैबिया के लिए निकले हैं, बल्कि उमरे के लिए निकले हैं, और आपके साथ सहाबा गए हैं और आपकी ऊँटनी रास्ते में बैठ गई है हुदैबिया की जगह पर और चलना ही नहीं चाहती, सहाबा उसको कुचोके मार रहे हैं, उठा रहे हैं, क्योंकि आप सोचे कि 6-7 साल हो गए हैं मक्का गए नहीं, उदास हैं, उमरा करना चाहते हैं और बड़े शौक और तमन्ना से बेचैन मुस्तरिब होकर आए हैं, और ऐन करीब जाकर जो है अब ऊँटनी चली नहीं रही, क्योंकि अल्लाह का फैसला तो कुछ और ही था। अल्लाह का मकसद ये था कि इनको निकाला जाए और फिर उसके बाद ये काम तो ना हो लेकिन इसके नतीजे में और बहुत से काम हो। बाज़ औक़ात हम एक काम का इरादा करते हैं, वो नहीं होता, लेकिन उसके नतीजे में बहुत से काम होते हैं। हम जाहिर को देख रहे होते हैं, लेकिन बातिन के जो नतायज होते हैं ना, वो अल्लाह ताला को देना मकसूद होते हैं। तो ऊंटनी के बैठ जाने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? हबसहा हाबिसुल फील, कि इस ऊंटनी को जो है वो रोक दिया है किसने? जिसने फील वालों को रोका था। तो ऊंटनी अल्लाह के हुक्म से बैठ गई है। जैसे कि असाबुल फील जब आए थे तो उनका हाथी जो सबसे बड़ा हाथी महमूद था, वो भी चलता नहीं था, तीन रुख चलता था, एक रुख जो हरम की तरफ जाता था उस पर नहीं रख चलता था। तो बाज़ औकात ऐन उस वक्त जो है जब मामला सर होने का वक्त होता है तो वो काम होता नजर नहीं आता, इधर उधर हर तरफ अब हाथ मार रहे होते हैं। तो याद रखिए कि अल्लाह की तदबीर कुछ और ही चाहती है, और बहुत से उसके फवायद होते हैं, समरात होते हैं, जो हमारी जाहिर की आंख से नजर नहीं आते, लेकिन अल्लाह ताला वो समरात इंसान को देना चाहते हैं। तो बहरहाल ये सबक है, और ये सबक हम सबके सामने ये पैगाम लाता है कि ऐसे लोग जो हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत में दाखिल करेगा। और जन्नत में दाखिल करने के बारे में एक दफा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से पूछा कि सबसे कम दर्जे वाला जन्नती कौन है जो सबसे आखिर में जन्नत में आएगा? और तो फिर अल्लाह ताला ने उसका जो है बताया था, उसका निचोड़ मैं आपके सामने रख रही हूं कि जो सबसे आखिर में जन्नती आएगा तो वो कैसा होगा कि उसको कहा जाएगा कि तू जन्नत में जो है वो जा, तो कहेगा ए रब मैं कैसे जाऊं, वहां तो सब लोगों ने अपने अपने ठिकाने बना लिए। तो क्या फिर अल्लाह ताला की तरफ से जो है उसे कहा जाएगा क्या तू इस पर राजी है कि तुझे इतना मुल्क दिया जाए जितना दुनिया के किसी एक बादशाह के पास है? तो फिर जो है वो क्या कहेगा कि वो इसमें राजी हो जाएगा। तो कहा जाएगा इतना फिर और, इतना फिर और, इतना फिर और, हत्ता के मजीद पांचवी बार जो है क्या कहा जाएगा, 10 हिस्से और ज्यादा तुम्हें दिया जा रहा है। तो अल्लाह ताला उसको बहुत नवाजेंगे। और सबसे बड़ा दर्जे वाला जन्नती कौन है? जिनको मैंने खुद चुना, जिनकी बुजुर्गी और इज्जत को मैंने अपने हाथ से जमाया और इस पर मोहर कर दी, और उनके लिए अल्लाह ने ऐसी जन्नत तैयार की है जिसे ना किसी कान ने, ना आंख ने देखा, ना कान ने सुना, और ना दिल में ही जो है उसके बारे में तसव्वुर ही गुजरा। तो अल्लाह ताला ने बहुत सी जन्नत, जैसे एक हदीस में जन्नत के 100 दर्जे पता चलते हैं, सबसे ऊंचा दर्जा जो है जन्नतुल फिरदौस का है। तो अल्लाह ताला हमें भी जो है वो कोशिशें करने वाला, नेकियां करने वाला, और अपने आप को बचाने वालों में शामिल ना करे। और याद रखिएगा ये जिंदगी बर्फ की तरह पिघल रही है, बहुत मुन्नी सी छोटी सी थोड़ी सी जिंदगी है, ये नापायदार है। और जो है इस छोटी सी बर्फ सी बर्फ की तरह पिघलती हुई जिंदगी में आखिरत कमानी है, आखिरत कमानी है। आप जब घर में तेज तेज काम करती हैं, सांस चढ़ने लगता है ना, थकन होने लगती है, और जो है वो एक बेचैनी सी रहती है। तो याद रखिए कि आखिरत की तैयारी भी तेज तेज करनी है, भाग भाग कर करनी है। और इर्द गिर्द बहुत सी झाड़ियां हैं जिसमें कभी दुपट्टा लगेगा, कभी कमीज लगेगी, और कभी हाथ और पांव उलझेंगे, वो अपनी तरफ खींचेंगे। झाड़ियां बड़ी खूबसूरत हैं, वो कभी दोस्त होंगे, कभी घर वाले होंगे, कभी ये फोन और इंटरनेट की मसरूफियत, कभी दावत की, कभी ये विंडो शॉपिंग की, और कभी ये घूमना फिरना, कभी इर्द गिर्द, कभी सो जाना, कभी खाने के अंदर ही लगे रहना। तो ये बहुत सी बुशेज हैं, बहुत सी झाड़ियां जो अपनी तरफ खींचेंगी, लेकिन उन सब झाड़ियों से अपने दामन और दुपट्टे को छुड़ाते हुए, अपने हाथ और पांव को निकालते हुए आगे ही आगे जाना है। अगर दुपट्टा और कमीज ना निकले तो उतना हिस्सा उस झाड़ी के हवाले कर दीजिए, वो फिर यानी खुद ना उसके अंदर चले जाए, बल्कि क्या करें कि फिर वो जितना हिस्सा उसके अंदर रह गया तो अपने आप को बचाते हुए, जो फट गया है, जो उसके साथ लग गया, उसको छोड़ते हुए फिर आगे चले जाए। क्या मतलब है इसका कि अगर थोड़ा बहुत वक्त जाया हो भी जाए, और जिस वक्त एहसास हो कि हाँ ये मेरा तो वक्त जाया हो रहा है, मुझे तो जाना था नेकी की तरफ, तो फिर क्या करना है, फिर फौरन अपना मुहासबा करते हुए फिर अपनी रफ्तार को तेज कर देना है। इश्क बढ़ता रहा सुएदारो रसन, जख्म खाता हुआ मुस्कुराता हुआ, रास्ता रोकते रोकते थक गए जिंदगी के बदलते हुए जाविये। और इस मौके पर ये आपका जो पिछला पारा हुआ है, 25वां पारा, इसका आपने इम्तहान दिया है और कुछ बहनों ने अपने तासुरात लिख कर दिए हैं और मैं इनको, इनमें से जो है चंद एक आपके साथ भी जो है वो शेयर करना चाहती हूँ कि इसमें क्या बात हमारे सामने हमारी बहनों ने रखी है और हमें भी ये देखना है कि हम जो है हम कहाँ पर खड़े हैं, है ना। तो एक बहन ये कह रही हैं कि मुझे कुरान की हर आयत बहुत अच्छी लगती है और इस सूरतों में भी सारी आयतें बहुत अच्छी हैं और इन दिनों में कुछ परेशान थी मगर मुझे इन सूरतों ने जो आले हवा मीम है और वैसे 25वें पारे की, इससे बहुत तसल्ली मिली कि दुनिया के लिए हम इतने परेशान होते हैं तो आखिरत के लिए अगर मैं परेशान हूं तो कितना अच्छा हो। तो मेरे जो मसाइल हैं हर आयत मेरे सवालों का जो है वो जवाब दे रही है। और सूरत जासिया की आयत 21 और 22 पढ़ते वक्त मैं सोच रही थी कि मेरा मकाम कौन सा है। सूरत जुखरुफ में सफर पर जाने की दुआ और तरीका जब मुझे पता चला तो मैं सोच रही थी कि मुझे किस तरह सफर करना चाहिए और कयामत की आयतें पढ़कर मुझे बहुत डर लगता है ना। तो वाकई कुरान क्या करता है कि हमें जो है वो मुतासिर करता है, हमारे अंदर जो है वो एक इनकलाब लाना चाहता है। तो बात तो फिर यही है ना कि मैं और आप जो है वो कहां पर खड़े हैं। फिर इसी तरह हमारी एक बहन कहती हैं कि अल्लाह ताला का ये कहना कि इन्ना फिस समावाती वल अर्दी लआयतिल मुमिनीन, सूरत जासिया, के आसमानों और जमीन में ईमानदारों के लिए यकीनन बहुत सी निशानियां हैं। तो ये आयत कुरान में मुख्तलिफ अंदाज में आई है और बार बार आई है और गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें मुझे बहुत लज्जत महसूस होती है। और कहती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जब से कुरान से मैं जुड़ी हूं और मेरा दिल चाहता है सब कुछ छोड़कर बीबी आयशा जैसी बन जाऊं और इनकी सीरत का मताला और कुरान में गौर व फिक्र करना अब मेरी आदत बन गई है। कह रही है, मिसाल के तौर पर आज मैंने घर जाकर स्ट्रॉबेरी खाई, मीठी मीठी सुर्ख रंग की और एक थोड़ी दूसरी जुड़ी हुई जिसको जोड़ा कहा जाता है। और फिर ये के मीठी भी और थोड़ी फीकी भी। और आज क्लास में सबक पढ़ा माँ और औलाद के दरमियान, जैसे माँ मुख्तलिफ मराहिल से गुजरती हुई वाहनन अला वाहनन जो है। और फिर वो जो पढ़ा जो खून की कमी के अंदर से भी बच्चा खून चूसता है और बाहर आकर भी, है ना। तो कहती हैं कि यकीनन जो है ये सारी बातें मुझ पर असर रखती हैं और फल जो हैं जैसे स्ट्रॉबेरी, उससे हमें ब्लड भी मिलता है और ये अल्लाह की कुदरत के करिश्मे हैं। और मैं गौर करती हूँ कि जितने भी जो है वो हम फल खाते हैं और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के फल हमें यहाँ पे मिलते हैं, तो ये क्या है, ये अल्लाह ताला की तरफ से ये नेमतें जो हैं हमें मिलती हैं। फिर कहती है, मेरी अम्मी जो है और मेरी नानी अम्मी, जिनको हम अम्मा जी कहा करते थे, उनसे बहुत सीखा। वो इतने इत्मीनान से बातें और अच्छी बातें करती थी जिनसे बहुत अच्छा जो है वो एक मॉरल सपोर्ट मिलता था। आज हमारे घर में वो बात नहीं, ये शिकायत नहीं मगर हकीकत बता रही हूँ कि हम अपने उस्ताद को बहुत इज्जत से पेश आते, यानी उनकी नानी कहती थी कि हम अपने उस्ताद को बहुत इज्जत से पेश आते, उस्ताद भी मोहब्बत देते थे, आज उस्ताद भी दोस्त बना लिए हैं, आए दिन कुछ ना कुछ फिर होता रहता है। मकसद ये कि उस्ताद की उस तरह से इज्जत नहीं की जाती। फिर वो कहती हैं कि इंसान ने अल्लाह को याद करना और उसकी किताब पर गौर व फिक्र करना जो है ये बात बहुत सादा है, अहम है, लेकिन लोगों ने इसको करना जो है वो छोड़ दिया है। फिर इसी तरह एक और बहन है, वो ये कहती हैं कि तदब्बुर जो है ना, ये मेरी जिंदगी की बहुत कीमती दौलत है। और हम क्या कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि तदब्बुर करना चाहिए। और दूसरी अहम बात वो ये कहती हैं कि हत्ता कि अगर बाथरूम तक में भी हम सुन्नत का तरीका अपना लें तो बाथरूम में जाना भी हमारा इबादत बन जाएगा, नियत और फिर सुन्नत रसूल का ख्याल। फिर इसी तरह हमारी एक बहन कहती हैं कि 25वें पारे में से सूरत शूरा की आयत 43 ने मुझे बहुत मुतासिर किया और वो क्या है, और जो सबर करे और बख्श दे, माफ कर दे, बेशक ये अलबत्ता बड़े हौसले के कामों में से है। इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, कहती हैं जब ये आयात पढ़ी कि बुराई का बदला तो लिया जा सकता है मगर इतना ही जितनी बुराई की गई, इन आयात ने मुझे हिला कर रख दिया। जिंदगी में ऐसे बहुत से वाकयात पेश आते रहते हैं जब किसी की बात या अमल से तकलीफ पहुंची और हम बदला लेने पर आते हैं तो होश कहाँ रहता है कि क्या बोल रहे हैं, कितना बोलते चले जाते हैं, अक्सर मजलूम से जालिम बन जाते हैं। कभी किसी की इतनी गलती नहीं होती जितना उसको सरजनश करते हैं। और फिर हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने जो कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि अल्लाह की कसम रसूल ने अपनी जात के लिए कभी बदला ना लिया, कहती हैं यह हदीस पढ़कर अपने आप से बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। अपना तो हाल ये होता है कि अपने नफ्स पर चोट लगती है तो चीख उठते हैं, अल्लाह के मामलात में आसानी से कह देते हैं कि इस शख्स का और अल्लाह का मामला है, लेकिन अल्लाह ताला ईमान वालों की जो खसूसियात बताते हैं उसके मुताबिक अल्लाह को क्या कैसे लोग पसंद है, सबर भी करें और उसके साथ जो है वो माफ कर दे। तो अल्लाह को माफ करना बहुत पसंद है और मैंने अपने अंदर ये खूबी पैदा करनी है, फाफू वस्फहू, उसकी मैं अमली तस्वीर जो है वो बन जाऊं, तस्वीर बन जाऊं। दूसरी कहती हैं कि ईमान वालों की जो खसूसियत यू के नून है ना, मुझे उसने बहुत मुतासिर किया। सूरत जासिया आयत 4 में कि ईमान का यकीन की इस हद तक पहुंच जाना कि मिलकर ठंडक बन जाए, दुनिया के मसाइब तकालीफ जो है उस पर दिल परेशान ना हो। मेरी दुआ है कि मेरा जो ईमान है वो इसी तरह यकीन की हद को जो है वो पहुंच जाए। तो बाकी बहनों के इंशाल्लाह अगले सबक में देखेंगे। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।